का समय सार है और इस समय सार के पुण्य पाप अधिकार की 147 नंबर की गाथा चल रही है। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है जो हमने देखी है पहले भी कि पुण्य और पाप ये दोनों समान ही है। यहाँ पुण्य को सुवर्ण की बेड़ी कही है, सोने की, और पाप को लोहे की बेड़ी कही थी। दोनों ही बंधन स्वरूप ही है, बंधन की अपेक्षा दोनों ही समान ही है। यानी आप पुण्य परिणाम करो या पाप परिणाम करो, आप बंधन में ही पड़ने वाले हो, इस बात को बता रहे हैं। और जो ऐसे परिणाम है उसे हम सुशील परिणाम कैसे कह सकते हैं? इसके विरुद्ध में जो जीव अपने स्वभाव को पहचान कर अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाएगा तो वहां तो उसके ना शुभ ना अशुभ कोई भी परिणाम होंगे। उस शुद्ध परिणाम से नए बंधने वाले कर्म भी रुक जाएंगे और ऐसे शुद्ध परिणाम उनको यहां सुशील कहने में आया है। और वो दो जो परिणाम है वो मनोरम या अमनोरम हथनी के जैसे कुट्टनी कहा उसको, ऐसे बताए ताकि वे क्या करते हैं, जो उसके पीछे लगता है उसको खाड़े में डालते हैं, यानी बंधन में डालते हैं। ये बात हमने देखी थी। इस तरह ये जो प्रवचन रत्नाकर भाग छठा है उसके पृष्ठ क्रमांक 51 पर हम आए हैं। अब यहां आखिरी दो लाइन अपनी चल रही है। कहते हैं आहा परमेश्वर पद पोते शक्तिये अंदर गुप्त पड़ियू छे। क्या कहा? देखो हमने आपको बताया था सोनगढ़ में आप जाओगे तो सुबह सुबह 5 बजे वहां जो रिकॉर्ड लगती है वहां कहते हैं तू परमात्मा छो एम पेला नक्की कर। और वही बात यहां कही है कि परमेश्वर पद पोते शक्तिये अंदर गुप्त पड़ियू छे। केम गुप्त पड़ियू छे? कि ते जाणू नथी एटले गुप्त छे। तू जानी जाइस तो अगुप्त थी जशे। ख्याल में है ना? तो शक्ति स्वरूप से तो तू परमेश्वर जैसा ही है, ऐसा यहां समझाना चाहते हैं। एने तू व्यवहारना राग थी प्रकट करवा मागे पन ए रीते प्रकट नहीं थाय। क्या कहा? कि ये जो परमेश्वर पद परमेश्वर रूप शक्ति जो तेरे में निरंतर है उसको प्रकट करने के लिए तू राग से वो प्रकट करना चाहे, राग यानी यहां शुभ परिणाम, शुभ परिणाम से तू प्रकट करना चाहे पन ए रीते प्रकट नहीं था भाई। शक्ति अपेक्षाएं परमात्म पद अंदर गुप्त छे, खरेखर ते ढंखायु छे एम नथी, पण शक्ति पने गुप्त छे। पर्याय मा राग नो संबंध छे, राग नो प्रेम छे, ए भाव आवरण छे, अने द्रव्य आवरण एटले जड़ कर्म आठ कर्म ए तो एनु निमित्त छे। क्या कहते हैं, यहां पर बिल्कुल स्वच्छ रीति से बताया है, यह जीव जो संसार में भटक रहा है, चार गति और 84 लाख योनि में जन्म मरण कर रहा है, वो स्वयं के भाव कर्म के कारण, स्वयं के मोह राग द्वेष परिणाम के कारण, और वहां निमित्त से जड़ कर्म है। कह रहे क्या कहा देखो, पर्याय मां राग नो संबंध छे, सेकंड लाइन राग नो प्रेम छे, राग नो प्रेम कहो के रागनी रुचि कहो, एक ज वात छे, ए आवरण छे, याने हम अपने पे ही ए मोह रूपी आवरण को प्रसारित कर रहे, मतलब उसको क्या कहना चाहता हूं मैं, पसरे हुए है वो, हमने स्वयं ने ये आवरण, अने द्रव्य आवरण यानी जड़कर्म तो एनु निमित्त छे। आचार्य कहे छे माटे चित्तमा मनमा उंडे उंडे पण राग प्रत्ये प्रेम करीश नहीं। क्या कहा आपने, पूछा ना प्रश्न बिन, देखो आइया उत्तर आ गया, मैंने बोला आप रुकना जाना नहीं। क्या कहते हैं, चित्तमा के मनमा सूक थे के उंडे उंडे पण राग छे। अरे कोना प्रति, अपना घरना बाल बच्चा छोकरा ये तो मुकी दियो, साक्षात पंच परमेश्वरी प्रति नो राग जे अपड़ो बाकी छे, ते उंडे उंडे पड़ियो छे, ते राग प्रति प्रेम करीश नहीं। देखो देखो, अभी तो आप तो महिला है तो आप तो ये बिल्कुल बात समझ जाएंगे, जो हमारे घर में कोई बेटी बड़ी हो जाती है हाँ, तो वो मान लो कि साल के 20-21 साल में शादी करेगी और वो अपने पति के घर जाएगी, और वो पति के घर में जाते हुए अपने मैके के बारे में ही अधिक सोचेगी, उधर ही उसका मन अटका रहेगा, तो अपने नए जिंदगी में वो कैसी सफल होगी, उसको तो बार बार अपने घर की याद आती है। तो उसको भले अपने माता पिता भाई बहनों के प्रति प्रेम हो, पर उसको गौन करके अभी जो नए घर में जिसने प्रवेश किया है वहां उसको अपने घर में रहना है। वैसे ही यहां कह रहे हैं कि ये जो राग जो है, राग के प्रति जो राग है या राग के प्रति जो रुचि है, उसको जब तक तुम नहीं छोड़ोगे तब तक अपने स्वरूप में कैसा स्थिर हो सकोगे। तो प्रश्न तो यही उठता है, भाई राग तो हमें छोड़ना है तो हम क्या करें, तो अपने स्वभाव की पहचान करें, अपने स्वभाव को जाने पहचाने। जब हमें किसी चीज की महत्ता लगती है तो हम उसके तरफ दौड़ते हैं ना। जैसा मान लो कि आपको पता लगा कि यहाँ स्वाध्याय चलता है तो आप घर का कामकाज छोड़ के यहाँ आई ना, तो इसके प्रति महत्ता लगी। वैसे हमें अपने स्वभाव के प्रति जब तक महात्म्य नहीं आता है कि इस दुनिया में आश्रय करने योग्य मैं स्वयं ही हूं, साक्षात अनंत सिद्ध भगवान का भी आश्रय करना मुझसे नहीं होगा क्योंकि वो तो पर पदार्थ है, मैं स्वयं स्वभाव से परमात्म स्वरूप हूं, उसका मैं आश्रय लूंगा तो पर्याय में परमात्म पद तैयार होगा। आप चाहते थे ना, देखो अभी ऐसे सहज बात आ गई कि ये क्या करना चाहिए, कि हमें सच्ची बात पता लगेगी तो झूठी बात अपने आप निकल जाएगी, हमें अपने स्वभाव के प्रति सच्चा नॉलेज कहो ज्ञान होगा तो हम झूठ बातों को छोड़ देंगे अपने आप। सोचना, आपने कभी ऐसा सोचा था कि मैं ज्ञान 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 करने के अलावा मैं अन्य कुछ नहीं करता हूं? क्या हमने अपने स्वरूप को ऐसा जाना है माना है, मैंने तो कुछ करना ही है, बच्चों को संभालना है, स्कूल को भेजना है, शादी करनी है, यही हमने जिंदगी भर किया लेकिन मैं ज्ञान स्वभावी हूं ऐसा कभी जानने की मानने की कोशिश की है? तो जब हमें अपने स्वभाव की पहचान नहीं है तो हम उसमें एकाग्र कैसे होंगे, है ना? जैसे किसी लड़की को बोले जा तो वो फलाने घर में जाके रहना, थोड़ी जाने वाली है। जब तक उसका दिल नक्की नहीं करता है कि यही मेरा पति है, उसने एक्सेप्ट किया, श्रद्धा की, जभी तो वहां जाएगी। वैसे है, अपने स्वभाव में एकाग्र होना है तो अपने स्वभाव की पहचान होनी चाहिए। और इसलिए कहते हैं यहाँ के आत्मा ज्ञान स्वरूप है, बस ये पहले नक्की करो। तो इसलिए कहते चित्तमा मनमा उंडे उंडे पन राग प्रत्ये प्रेम करिश नहीं। आगळ गाथा 148 मां आवशे। कुच्छ्य शीलम जणम व्याणित्ता आ कुशीलियो छे व्यभिचारी छे एम जानी ने सत्पुरुषो एनो संग एटे संसर्ग करता नथी तेम सत्पुरुष एटले सत्पुरुष अर्थात सत स्वरूप निज शुद्ध आत्माना आश्रय जेने सत जीवन जीवू छे तेने कुशील एवा रागनो संसर्ग न करवो जोइए। माटे कहे छे भाई चित्तगतम रागम मा कुरु। क्या कहते हैं
डॉक्टर?
मन मा ऊंडे ऊंडे पन रागनी प्रीति मा कर याने मत करो। भाई आ तारा हितनी वात छे प्रभु। अज्ञानी जीव अनादि थी कषायनु एटले रागनु सेवन करी करी ने खुशी थई रह्यो छे। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े रईस लोग, रईस यानी क्या, पैसे वाले यहाँ आए। एक तो हमको ऐसा मिले कि साहेब आप हमारे घर में खाना खाने को आना। क्यों साहब, क्या बात है? तो क्या बोला उन्होंने? अच्छा, मैं आपको, आप भोजन करने आओगे तो आपको 11,000 रुपया दूंगा। ये भाई बेटा मैंने देखो ये बोला नहीं है, इसके सामने बोला है। अब देवलाली में हम भूगोल का शिविर लेने गए थे, वहां एक व्यक्ति से हमें ऐसा मैसेज आया कि हम आपको, हाँ बोलो बोलो, क्या बोला बोलो, 5,00,000 रुपया हम आपको देते, 5 एकड़ जमीन भी देते हैं, वहाँ अपना ये तुम स्वाध्याय चालू करो, वहाँ ये भूगोल का सब ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ।
मिलिंद भाई को कैसे पता चलता है हर जगह अब मौजूद है?
हाँ। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हाजिर था। ऐसी अनेक बातें हैं कि लोग कहते हैं कि भाई आपको क्या करने का है, पुस्तक छापने का है, आपको ट्रस्ट चलाने का है, कितना पैसा चाहिए बोलो, कितना? अभी ये तो रखो 50,000 रुपया, और कुछ लगेगा तो बोलना। हो महाराज वो बात नहीं, हमें तकलीफ दूसरी है। क्या है क्या है? आप स्वाध्याय के लिए आना, हाँ वो छोड़ के आप जितना पैसा चाहिए बोलो। क्यों, अभी आपके कितने आए थे लापसी भाई चापसी भाई जो कुछ होते हैं? क्या करें, लोगों को अपना बोझा लगता है ये स्वाध्याय करना। पैसा एक मिनट में दिया, खिटपिट कितना गया, 2-5 लाख गया ना, 2 दिन में 50,000 तैयार करूंगा, 5 लाख को 10 दिन क्या फर्क पड़ता है, ऐसा लोग मानते हैं। स्वाध्याय नहीं नहीं, नहीं ये बहुत बोझा 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 लगता है। या अभी मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी रश्मि बहन बोलती है ऐसा। उनको एक नया घड़ी मिला था, नया घड़ी यानी नया व्यक्ति मिला कि नहीं, आप हाँ या ना बोलो ना बेन, नहीं याद आता है तो मैं याद कराऊंगा आपको। कोई मिला था कि नहीं मेरे को आना है करके? देखो ये ऐसे ही है भाई, किसी को अपने स्वभाव को अपने स्वरूप को जानना ही नहीं है, धर्म तो करना है सब। और यहां तो आचार्य कहते हैं कि जब तक तू अपने स्वरूप को नहीं जानेगा नहीं समझेगा तब तक रंच मात्र भी धर्म की शुरुआत नहीं है, तब तक रंच मात्र भी एक कर्म यहां से वहां हिलने वाला नहीं है। हमने पढ़ा है ना, जो जीव आत्मा का अनुभव करता है उसके 41 प्रकृतियां बंधना बंद हो जाते हैं। क्यों? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया है ना। अब बोलो ये कैसा करने का, बताओ बताओ फटाफट बोलो हमको, ये कर्म हटाने का। अरे काहे हटेगा, तू आत्मा को तो जान प्रभु। हाँ, जब तू शुद्ध उपयोग में होगा, कोई राग द्वेष के परिणाम ही नहीं करेगा, तब तो एक कर्म भी नहीं बंधेगा उस समय तक। उस समय तक बाद में अपने स्वरूप से बाहर आवे चालू गाड़ी। ये बात है, यहां वही कह रहे हैं। क्या कह रहे देखो, अज्ञानी जीव अनादि थी कषायनु रागनु सेवन करी करी ने खुशी थई रह्यो छे, ते शुभ भाव रूप व्रत तप इत्यादि करे छे अने तेनी उजवणी करीने राजी थाय छे। ये उजवणी अने क्या होता है भाई? हाँ 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 सेलिब्रेशन। हाँ वो हाँ उपवास करेंगे तो क्या करते हैं ना,
उद्यापन उजवनी मनाए छे
वही सब। खुद 10 दिन भूखा रहने का और बाद में 1000 लोग को जिमाने का,
वो उद्यापन कहते ना।
हाँ, वही ना, खुशी खुशी थाई छे, क्योंकि अपने पैसे से खुद भूखा रहने का दूसरे को खिलाने का, ऐसा है
उजवनी।
हाँ उजवनी, उजवनी नहीं। ये क्या है, 3 अक्षर पहचान के ना तो आगे का बात समझ में नहीं आया। उजवनी करी ने राजी थाई छे। वड़ी सगा संबंधियों भेगा थाय ते पन राजीपो दर्शावे छे अने अनुमोदन आपे छे। तेने आई सद्गुरु कहे छे के भाई ए शुभ राग रूप जे कषाय छे ते अग्नि छे आग छे। ये कहाँ पढ़ा है याद है लक्ष्मीबेन? हाँ किधर लिखा? हाँ अभी आगे नहीं पूछता हूँ कि कौन सी डाल। कोई बात नहीं, इच्छा इतना भी याद आता बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं, ते राग छे अग्नि छे आग छे, क्यों दजाने वाली है ना, ते तारा जीव ने पर्याय मां बढ़तरा करनारी छे दुखदायक छे, एमा खुशी थवा जेवू नथी भाई, माटे शुभ राग नो स्नेह तू छोड़ी दे भगवान, आ तारा हितनी वात छे हो प्रभु, तने तारी प्रभुता नी खबर नथी, अंदर तू परमेश्वर स्वरूपे बिराजे छे ने नाथ, आ राग नी पामरता ए तारू पद नथी, ए राग नी रुचि नी आड़मा तने तारू निजपद केवू छे, निजपद परमेश्वर पद जणातू नथी, माटे तू राग ना रुचि अने संसर्ग छोड़ी दे। या हमेशा एक बात ध्यान रखना, या राग ने छोड़, शुभ राग ने छोड़ एम नथी कयू हो, शुभ राग नी रुचि छोड़ एम कयू छे। हाँ आप जहां जहां देखो देखो, संसर्ग की बात आएगी तो राग नी रुचि जो आ राग नो संसर्ग न करवो एनु स्पष्टीकरण चाले छे। गाथा मां पद पड़ी छे ने के साहिणो ही विनाशो कुशील सगरायन संसगरायन, कुशीलना संसर्ग ने रागती स्वाधीनता नो नियम थी नाश थाई छे, एनो अहीं अर्थ कर्यो छे के शुभ ने अशुभ कर्म साथे राग ने संसर्ग बंधना कारण होवाथी, शुभाशुभ कर्मों साथे राग ने संसर्ग नो निषेध करवामा आयवो छे। स्वाधीनता ना नाश नो अहीं अर्थ कर्यो के ए बंधना कारण छे। आहा स्वाधीनता शुद्ध अबंध स्वरूप छे। हाँ? अबंध स्वरूप नहीं, अबंध ही बोला था। एनी पर्याय मा आ राग जे बंधनु कारण छे ते पराधीनता छे भगवान, तारू स्वाधीन अबंध परमेश्वर पद छे, એમાં શુભરાગનો પ્રેમ તારી સ્વાધીનતાનો નાશ કરે છે, તને બંધનમાં નાખી પરાધીન કરે છે. આહાહા, જો આ સંતોની વાણી, જાગીને જઉં તો જગત દિશે નહીં, અજ્ઞાનમાં અટપટા ખેલ દીખે, શું કહે છે? હા, યાને જબ મુજે સહી સહી જ્ઞાન હોગા, યાને મુજે જાગૃતિ હોગી, તો ક્યાં કહેતે જગત દિશે નહીં, જાગીને જોઉં તો જગત દિશે નહીં. હમને પરસોઈ દેખા થા કે મિથ્યા જ્ઞાન કા કોઈ વિષય જગત મેં હૈ હી નહીં, આઈ થી ના મત? હા, યાને જીસ જીવ કા મિથ્યા જ્ઞાન ચલ રહા હૈ તો ઉસ મિથ્યા જ્ઞાન કા વિષય રૂપ એસા કોઈ પદાર્થ હી નહીં હૈ. તો યહાં ક્યા કહેતે હૈ, જાગીને જોઉં તો જગત દિશે નહીં, અને અજ્ઞાનમાં અટપટા ખેલ દીખે, યાને અજ્ઞાન મેં તો કુછ ભી આપણે મનગણંત કલ્પના ચલતી રહેતી, ભ્રમિત સ્વરૂપમાં સાવધાન થઈને જોએ. યહાં તો ઉન્હોને અલગ બાત બતાઈ હૈ. ક્યા કહેતે હૈ, સ્વરૂપમાં સાવધાન થઈને જોએ તેને રાગ અને વિકલ્પને આખોઈ જગત ક્યાં જણાય છે, યાને વો તો ઉસકા સ્વભાવ નહીં હૈ તો વો ઉસકો જાનને મેં નહીં આતા હૈ. કેમ કે જગદીશમાં જગત અને જગતમાં જગદીશ પરમાર્થે છે જ નહીં. એ જો અન્ય જીવો કી માન્યતા હૈ ને, જગદીશ અને ભગવાન, તો જગદીશમાં જગત યા જગતમાં જગદીશ પરમાર્થે અને સહી સહી દેખા જાય તો એસા હૈ હી નહીં, છે જ નહીં. આ રાગ મારો અને વિકલ્પ મારો ઇત્યાદિ તો અજ્ઞાનમાં વાસે છે, સમજાણું કાંઈ? હવે આવી વાત પેલા ભક્તિના રાગની હોશવાળાને આખરી લાગે, પણ શું થાય, વસ્તુ સ્વરૂપ જ આવું છે. વ્યાખ્યાન સાંભળીને એક ભાઈએ રાત્રિ ચર્ચામાં પ્રશ્ન કર્યો કે નિશ્ચયની પ્રાપ્તિ કરવી એ વાત તો સાચી, પણ એનું સાધન શું? બેન, આ પુસ્તક લગભગ 20 વર્ષ પહેલાં છપાણું છે, સ્વામીજીએ લેક્ચર એના પહેલાં કર્યા છે, હવે અહીંયા લખ્યું છે ને. હવે યહાં તો લિખા હૈ વીર સંવત 25-8 યા વિક્રમ સંવત 20-38, તો અભી કોણ સા ચલ રહા હૈ, વિક્રમ સંવત 62, ઓહ, યાને 24 સાલ તો નક્કી હો ગયે. યે પુસ્તક છપકર ઉસકે પહેલે સ્વામીજીને લેક્ચર દિયે થે, ઉનકો કિસીને ક્યા પ્રશ્ન પૂછા, દેખો, નિશ્ચયની પ્રાપ્તિ કરવી, નિશ્ચયની પ્રાપ્તિ કરવી અને આપણે આત્મા કા અનુભવ કરવા, એ વાત તો સાચી, પણ એનું સાધન શું, એ કેવી રીતે થાય? આપે પૂછ્યું ને કે મન બહુ ભ્રમ્યા કરે છે, તો એને એ શાંત કરવા માટે શું કરવું, એ જ વાત છે. દરેકને એ જ વાત છે, તમને છેમ નથી? બધા જીવોને એવી ઝંખના ચાલે છે કે હું આત્માનો અનુભવ કેવી રીતે કરું, એનું સાધન શું, કયું શાસ્ત્ર વાંચું, કયો પાઠ યાદ કરું, કેટલા પૈસા દાન કરું, એસા સબકો કુછ ના કુછ હૈ ના? તો કહેતે હૈ એમને મન એમ કે, યાને ઉનકો એસા સોચતે હૈ કે આ ભક્તિ કરીએ, સ્તુતિ ગાઈએ, વ્રત પૂજા કરીએ, એ બધું સાધન છે, પણ ભાઈ એ બધા સાધન છે જ નહીં, એ તો રાગ છે. અને રાગ કેવો છે? કુશીલ છે, અને એનું સાધન કરતા બંધન થાય છે, પરાધીનતાનો નાશ, સ્વાધીનતાનો નાશ થાય છે. કહ્યું ને અહીં કે છે કુશીલ ના સંસર્ગ રાગે નાશ સ્વાધીન તાતણો. એ અમને જો હરિગીત પડા થા ઉસકી દૂસરી લાઈન હૈ. ભાઈ અંતરંગ સાધન નિજ શુદ્ધાત્મા છે, યાને આપણે કો પ્રાપ્ત કરને કા સાધન ક્યાં હૈ કે આપણા આત્મા હૈ. દેખો અંતરંગ સાધન નિજ એટલે પોતાનો શુદ્ધાત્મા છે, અને તેના આશ્રય પ્રકટ થતા જે શુદ્ધ રત્નત્રય તે બહિરંગ સાધન છે, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको भी यहाँ बहिरंग साधन का है, क्योंकि भेदमय है ना, व्यवहार है वो। आ सिवाय अन्य कोई शुभ राग साधन छे नहीं। गाथा पंदरमा ना कहूं के जो पश्चदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम पश्चदि जिन शासनम सौवम। अबंध स्वरूप भगवान आत्मा छे एने जे देखे छे एवं सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान ते जैन शासन छे। यानी क्या कहा है, देखो भगवान आत्मा जो है वह बंध स्वरूप नहीं है, यानी अबंध स्वरूप है, यानी उसको किसी ने बांधा हुआ है, कर्मों ने उसको जकड़ा हुआ है, ऐसा है ही नहीं, अबंध स्वरूप है। अने एने जे देखे यानी उनको जो समझेगा पहचानेगा और उसमें एकाग्रता करेगा, ऐसा जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है वह जैन शासन है। राग कहीं जैन शासन नहीं भाई। वितराग नो आवो मार्ग छे एने तू रुचि मा तो ले। भगवान आत्माना अनुभवना रसना स्वाद विना ए मोक्षना मार्गनी शुरुआत ज थती नथी। आ रागनो जे रस छे स्वाद छे ए तो आकुड़ता छे पराधीनता छे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा बेन कि आप रुक गई, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इधर आया है ना। विक्रम संवत 2010 मां प्रश्न थयो हतो, अभी हमने 2038 पूछा ना, उसके पहले और 28 साल। महाराज आ देवगुरु शास्त्र तो शुद्ध छे, ए शुद्ध ने परद्रव्य केम केवाय? प्रश्न समझ में आया नलिन भाई? त्यारे कीधु हतु भाई शुद्ध चिदानंद घन स्वरूप आ पोते भगवान आत्मा स्वद्रव्य छे, अने ए सिवाय बीजू बधु परद्रव्य छे, केम के स्वद्रव्य मा ए सर्वनो अभाव छे। कौन सा अभाव है मिली भाई? हाँ इतना टाइम लगते हैं, ढूंढना पड़ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा ध्यान किधर है? अच्छा अच्छा। क्या कह रहे, देखो यानी अभाव है यानी दोनों का स्वचतुष्ट भिन्न है, दोनों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुदा जुदा है। तो एक नो एक द्रव्य स्व द्रव्य में एटले मेरे द्रव्य में अन्य सारे अनंत द्रव्यों का अभाव है, तो अनंत द्रव्यों में तो देवगुरु शास्त्र भी आ गए ना भाई। साक्षात जिन देव होए के जिन प्रतिमा होए के जिनवानी होए ए सर्वनो स्वद्रव्य में अभाव छे, माटे ते परद्रव्य छे। अने ए परद्रव्यना आश्रय जे परिणाम थाय ते राग छे, ए राग कुशील छे बंधनु कारण छे, एम ही कहे छे। पद्मनंती पंचमविंशति मां कहूं छे के स्वरूप ने छोड़ीने आ बुद्धि जे शास्त्र मां जोड़ाई छे ते व्यभिचारिणी छे। ये पद्मनंती पंचमविंशति में ये जो बात कही है वो मुनियों की अपेक्षा से है वो, यानी हमको भी वो छोड़ के इधर उधर घूमना नहीं है। क्या कहते हैं कि स्वरूप ने छोड़ी ने, अभी मुनि दीक्षा ली है तब उनको तो अपने स्वभाव में स्वरूप में ही अधिकतर लीनता करनी चाहिए, वो छोड़कर वो शास्त्र स्वाध्याय आदि में लगे रहे तो उनकी बुद्धि सही काम नहीं कर रही है। एटले के शुभराग छे ते व्यभिचार छे, जेम परस्त्री नो संसर्ग व्यभिचार छे तेम परभाव नो संसर्ग ए व्यभिचार छे, जेम स्त्री ना संभोग मा मैथुन छे एम राग नो संभोग ए मैथुन छे। गजब वात छे भाई, जहां सुधी पूर्ण वितरागता न थाय त्यां सुधी साधक दशामा वच्चे एवा देवगुरु शास्त्र प्रत्येनी भक्तिना भाव आवे खरा पन ए धर्मनु के मोक्षनु कारण छे एम छे नहीं समझाणु काई प्रश्न परंपराए पन नहीं अभी देखो परंपरा की बात बताते हैं परंपराए छे एनो अर्थ शू देखो ये हमेशा यही बात होती है ये परंपराएं यानी ये जो शुभ भाव कर रहे हैं वह तो परंपरा में उसका आगे कुछ काम होगा क्या नहीं ऐसा बताना पूछना चाहते हैं क्योंकि कई शास्त्रों में लिखा है कि शुभ भाव भी परंपरा मोक्ष का कारण है वो तो व्यवहार का वचन है निमित्त का कथन है लेकिन यहाँ फिर भी पूछा गया है परंपराएं पर नहीं तो परंपरा छे एनो अर्थ शू समकीति धर्मात्मा ने वर्तमान में साक्षात मोक्ष मार्ग छे अने साथे यथा संभव राग पन छे यथा संभव यानी जैसा जो गुणस्थान में होगा उसके अनुसार उसका राग अलग अलग होगा हवे पचीते स्वभावनो उग्र आश्रय करिए ने ए राग ने टाळशे अने मोक्ष ने पामशे माटे ए शुभ राग ने उपचार थी परंपरा कारण कयो छे खरेखर राग ए वीतरागतानु कारण होई शके नहीं अज्ञानी ना राग मा आवो उपचार पन संभवित नथी राग का भी जो परंपरा कहा ना वह भी किसका राग तो सम्यक भी के इसलिए पहले में पहले कौन सा वर्डिक दिया कि राग ए वीतरागतानु कारण हो ही नहीं सके निश्चय से व्यवहार से तो कहा है और आगे क्या कहते हैं अज्ञानी ना राग मा आवो उपचार ने उसको भी वितरकता का कारण नहीं कह सकेंगे कुंद कुंदाचारणु बार भावनानु पुस्तक छे एमा राग ने परंपरा अनर्थनु कारण कहूं छे समय सार गाथा 74 मा शुभ राग ने वर्तमान मा दुखनु कारण अने भविष्य माए दुखनु कारण कहूं छे एनो अर्थ शू के शुभ भाव थी जे पुण्य बंधाशे एना कारणे भविष्य मा जिनदेव जिनगुरु जिनवानी आदि संयोगो मळशे अने एनु लक्ष्य थता एने राग ज थशे दुख ज थशे ये बहुत कड़क बात है ओ क्या कह रहे हैं अरे ये तो बहुत पुण्य का उदय है कि हमको जिनवानी सुनने को मिलती है हाँ पर सुनने का जो तेरा राग है वह दुख स्वरूप है कह रहे क्यों अरे तुझे तो अपने स्वभाव में एकाग्र होके अनाकूल ऐसे स्वभाव का वेदन अनुभव करना है तो ये राग रूपी दुख में तो अटका हुआ है देखो यहाँ क्या कहते हैं तू शुभ भाव करेगा ये थर्ड लाइन एनो अर्थ शू मड़िया के शुभ भाव थी जे पुण्य बंधाशे एना कारणे भविष्य में जिनदेव जिनगुरु जिनवानी आदि संयोगो मळशे हाँ क्योंकि तुमने इस साल इस भाव में साल ने इस भाव में अच्छे परिणाम किए शुभ परिणाम किए इसलिए अने वो जिनवानी वगैरह उसको मिले अने एनु लक्ष्य थता ये लक्ष्य किसका हो रहा है स्व का हाँ रश्मिबेन किसका लक्ष्य हो रहा है हाँ पर का इसमें पर में किसको लिया जिनवानी जिनदेव और जिन गुरु और उनके तरफ लक्ष्य जत्थता इने राग ज थशे अने शू थशे दुख ज थशे तो सुख प्राप्त करने का इलाज क्या है उपाय क्या है तो कहते निज आनंद स्वभाव में एकाग्रता करना यही तो सुख का मार्ग है सुख स्वरूप है राग अम्मे ते हो पंते पराधीनता करीने आत्मा ने शांति अने स्वाधीनता नो नाश करे छे जो एम छे तो हवे अमारे कर्मो शू तकलीफ ए छे बधाने के राग पण दुखनु कारण छे भगवान ने भजवानु नथी જીણવાની સાંભળવી નથી તો કરવું શું? ભાઈ આ કરવું કે પોતે શુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ વસ્તુ છે તેને રાગથી ભિન્ન પાડીને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનું સેવન કરવું. ક્યાં કહેના ચાહતે આપની ભાષામાં સમજના હો તો પહેલે મેં પહેલે ક્યાં બતાતે કે અપને સ્વભાવ કો પહેચાન કર ઉસી મેં એકાગ્ર હો જા. તો અભી યહાં ક્યાં કહેતે તું સ્વયં કૈસા હૈ? તો કહેતે તું સ્વયં શુદ્ધ હૈ ઓર ચૈતન્ય યાને જ્ઞાન દર્શન કા ઘન યાને એસા તું પિંડ હૈ એસા સ્વરૂપ તું તું સ્વયં એક દ્રવ્ય હૈ વસ્તુ હૈ એસા કહેતે તેને ઉસ સ્વભાવ કો રાગતી ભિન્ન પાડીને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ કરવું સેવન કરવું યાને વો થોડી લિક્વિડ હૈ આત્મા કે ઉસકા સેવન કરેગા ઉસકા અનુભવ કરના વેદન કરના. કામ તો કઠણ છે કેમ કે અનંત કાળમાં કર્યું નથી એ અપેક્ષાએ કઠણ છે પણ અલભ્ય નથી એટલે એનો લાભ ન થાય એમ નથી એ તો મળવા જેવો છે. અરે એનાથી સહેલું કામ કોઈ નથી. આ જે છે ને આ પેન્સિલને ઉપાડવો એ શક્ય નથી. ક્યાં આત્માનો અનુભવ કરવો સહેલો કેમ કે પોતાનું છે ને એ ભાઈ આ તો પર પદાર્થ છે. પર પદાર્થ તો તે કોઈ દી આડ્યો નથી હજુ તો. આ નવા માણસને જરા વાત બેસતા કઠણ થાય. इसलिए कहते हैं कि काम तो कठिन छे केम के आनंद काल में कर्यु नथी पण अभ्यास नथी पण अलभ्य नथी. भगवान तू आत्मा पोते छे के नहीं छे ने तो एनी सामे जो तो ए पोते जहाँ छे त्यां छे जहाँ छे त्यां जो जाए नथी त्यां जोवानु छोड़ी दे. આજ માર્ગ છે. ચોથી ગાથામાં આવે છે ને કે સુદ પરિચિદાનુભૂદા સવસવી કામ ભોગ બંધ કહા. ક્યાં કહેતે હૈ કામ ઇસકા અર્થ હૈ ઈચ્છા અને ભોગ ઇસકા અર્થ હૈ ભોગવું. તો કહેતે રાગનું કરવું અને રાગનું ભોગવવું એવી વાત તો તે અનંતવાર સાંભળી છે એનો અનંતવાર પરિચય કર્યો છે અને અનંતવાર અનુભવ પણ કર્યો છે. પ્રભુ તું રાગથી ખૂબ ટેવાય ગયો છું. શુભ રાખતી હો પછી અશુભની તો વાત જ શી કરવી. તું નિગોદમાં હતો ત્યાં પણ તને શુભાશુભ રાગનો જ અનુભવ હતો ને. જો બટાટાની એક રાઈ જેટલી કટકીમાં અસંખ્ય ઉદારિક શરીર છે એક એક શરીરમાં અનંત નિગોદના જીવ ઠસોઠસ ભરેલા છે તે દરેક જીવ શક્તિ સામર્થ્ય બને પરમાત્મા સ્વરૂપ છે.
જો એ ક્યાં કહેતે હૈ બટાટાની એક રાઈ જીતની કટકી જો હૈ હમને દેખા થા ને સુઈ કે નોક કે ઉપર લે લેના ઉસકી એક છોટી કટકી ઉસમે ક્યાં હૈ અસંખ્ય ઔદારિક શરીર છે ઉનકી સંખ્યા અસંખ્ય હૈ એક એક અલગ અલગ દેહ એક એક શરીરમાં અનંત નિગોદના જીવ ઠસોઠસ ભરેલા છે. इतनी सी राई जितनी बटेटा की जो कटकी है उसमें देह कितने हैं असंख्य और एक एक देह में जीव है अनंत. एक एक देह में अनंत अनंत जीव ठसोठस भरे है. ते दरेक जीव शक्ति एटले सामर्थ्यपणे परमात्मा स्वरूपे छे. प्रत्येक जीव सामर्थ्य से तो परमात्मा स्वरूप ही है भले अभी अवस्था में निगोद में है फिर भी આવા શક્તિપણે પરમાત્મા સ્વરૂપ એવા અનંત જીવો પર્યાય બુદ્ધિ વડે રાગની એકતાના અનુભવમાં જ પડેલા છે. ઉસકો અનુભવ કિસકા ચલ રહા હૈ રાગ કા. क्यों? क्योंकि पर्याय जितना ही मैं हूँ, ऐसे पर्याय जो क्षणिक है, अशुद्ध है, उसका अपना कायमी स्वभाव मान लिया। अभी हमने देखा था ना प्रवचन सार में, हा? तो उसके कारण उसके राग की एकता में ही, उसके अनुभव में ही पड़ेला छे। ए बधा निगोदना जीव राग ने वश थई ने त्या रहया छे, कर्म ने कारणे नहीं। हमें तो ऐसा लगता है, ऐसे ये अवस्था क्यों, क्या करे, कर्म ऐसा बांधा है। तो उस जीव की वैसी वैसी योग्यता है, उसके वैसे भाव है, इसलिए वो किसी भी पर्याय में क्यों घूम रहा है, संसार में क्यों घूम रहा है, तो उसके अपने स्वयं के मिथ्यात्व और राग द्वेष के कारण ही जीव घूम रहा है। राग ना प्रेम ने आधीन थई ने पराधीन पणे, किसके पराधीन हुआ? कर्म से। राग का प्रेम है उसको, पराधीन पणे ते वो निगोद ने छोड़ता नथी, वो स्वयं अपनी योग्यता से वहां पड़े है।
देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं, कर्म के कारण जीव गति बदलता नहीं है, या निगोद में जो वहां रहा हुआ है वो अपने स्वयं के परिणामों से रहा हुआ है, वहां उसके जो मिथ्यात्व के आते तीव्र परिणाम है, उसी कारण उसको वैसी वो गति कहो जो है वो चल रही है। हम तो समझते नहीं, उसने तो निगोद का तीरंच गति बांधी इसलिए वो वहां गया, वो तो निमित्त का कथन है। क्या कह रहे हैं देखो, रागना प्रेम ने आधीन थी ने पराधीन पने तेवो निगोद ने छोड़ता नथी, कर्मना कारणे निगोद छोड़ता नथी एम नथी कहूं,
स्वयं पराधीन हुआ है, किसी ने उसको किया नहीं है, और वो भी पर के पराधीन ने पर के आधीन नहीं है, राग के प्रेम के आधीन हो गया है उसका। उसके लिए देखो गोमट सार में क्या कहा, गोमट सार मां गाथा 197 मां कहूं छे, आवे छे, भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। सुपौरा ने प्रचुर, क्या है प्रचुर भाव कलंक, भाव कलंक किसको कहा, मिथ्या दर्शन ने मिथ्या ज्ञान ने कारणे देव निगोद वास ने छोड़ता नथी। वो निगोद में क्यों पड़े हैं अभी तक, वो प्रचुर भाव कलंक के कारण वहां पड़े हैं, प्रचुर मिथ्यात्व के कारण वो वहां से छूटते नहीं है। अरे एवा किटला अनंता जीवो एवा पड़ा छे के जे कदी निगोद वास नहीं छोड़े। कब से है निगोद में? अनादिकाल से है, वहीं पर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म जन्म मरण चल रहा है। कब तक कायम वो निगोद में ही रहेंगे, ऐसे अनंत जीव है वहां पर, क्योंकि नित्य निगोद कभी खाली नहीं होगा। नित्य का अर्थ क्या है? अनादि से ही वो लगातार वहीं पर जन्म मरण करता आया है। कोई तो जीव वहां से छूट जाएंगे, पर ऐसे कितने ही अनंत अनंत जीव रहेंगे, निगोद में ही कायम रहेंगे। राग ने वश थई ने करवामां आवतुं जे मिथ्यात्वनुं सेवन तेने लईने तेओ निगोद वासने नहीं छोड़े, आवी वात छे। हमें लगता है ना बिचारे वहां पड़े हैं, परंतु वो स्वयं अपनी योग्यता से वहां पड़े हैं, भाव कलंक प्रचुरता से। अहीं कहे छे शुभाशुभ कर्मों साथे राग अने संसर्ग स्वाधीनतानो नाश करता हुआती, अर्थात बंधना कारण हुआती, शुभाशुभ कर्मों साथे राग अने संसर्गनो निषेध करवामां आव्यो छे। देखो ये उपदेश भी हमें संगी पंचेंद्रियों को दे रहे हैं। भले अभी निगोद पर्याय छूटकर यहाँ आए हैं, परंतु राग के प्रेम के अधीन हो जाएंगे तो वहीं पहुंचने वाले हैं जहां से निकले थे। ख्याल है ना, लोगों को क्या लगता है, अरे शुभ तो कर रहे हैं, परंतु शुभ का जो प्रेम है वो मिथ्या भाव पड़ा है, मिथ्यात्व का कारण वहां पड़ा है, और शुभ भाव करेंगे तो एकाध भाव एकाध गति कुछ संयोग अच्छे मिलेंगे, और फिर वापस निगोद में चला जाएगा जी, पाछू जाए छे त्या, पछी क्यारे निकले कई भरोसा नहीं, त्या अनंत काल त्या रखड़वू पड़े। ये पता ही नहीं ना जीवों का, ऐसे लगता है कि शुभ भाव करने से मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, व्रत उपवास करने से भगवान की वो भक्ति नहीं करो, ये बात नहीं हो रही है। परंतु प्रेम रुचि तो अपनी स्वयं की होनी चाहिए। सम्यक दर्शन को तो बताया ना, चढ़ाला में क्या लिखा है सम्यक दर्शन के लिए? हाँ, परद्रव्यनतई भिन्न आप में यानी स्वयं में रुचि सम्यक तो भला है। इसको तो रुचि किस में है? राग में। तो अपना स्वरूप जान तो उसको कहते हैं वो आत्मा फात्मा क्या होता है कि नहीं होता है पता नहीं है, मैं तो मनुष्य हूँ और मुझे शुभ राग करना चाहिए, और उसी राग के ही प्रेम में वो पूरा जीवन बिताता है और बाद में तो वहीं पर जाना है जहाँ से निकला है। तो कहते हैं ये निगोद की बात हो रही है कि राग ने वश थईने करवामां आवतु जे मिथ्यात्वनु सेवन तेने लईने तेवो निगोद वास नहीं छोड़े। वो तो उनकी बात हुई। अब उनके जैसे हम भी राग के रुचि के कारण अगर मिथ्यात्व का ही सेवन करते रहे तो वहां जाने का तो रास्ता खुला है सबके लिए। अभी बात छे अहे कहे छे शुभाशुभ कर्मों साथे राग अने संसर्ग यानी शुभ और अशुभ, ये शुभ की तो बात छोड़ो, अशुभ के साथ ही इतना प्रेम है नहीं है। परिग्रह का प्रेम तो सब जगह देखने में आ रहा है और उसकी सराहना भी की जाती है। तो शुभाशुभ कर्मों साथे कर्म यानी ये तो जड़ कर्म की बात नहीं है। शुभाशुभ कर्मों साथे राग यानी शुभ और अशुभ भावों के साथ जो रुचि पड़ी है, राग अने संसर्ग स्वाधीनता नो नाश करता हुआ थी, ये दोनों ही बातें जो है वो अपने स्वाधीन स्वभाव का नाश करते हैं अर्थात बंधना कारण हुआ थी। शुभाशुभ कर्मों साथे राग अने संसर्ग नो निषेध करवामां आव्यो छे यानी मान्यता में तो उसको छोड़ने लायक है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। भले भूमिका के अनुसार राग आएंगे, सम्यक दृष्टि को भी देवी गुरु शास्त्र की महिमा उसका राग आता है ना, मुनियों को भी आता है। भूमिका के अनुसार राग आना वो अलग बात है और राग का प्रेम होना उसमें रुचि होना उतना ही मेरा स्वरूप है और उतने से ही मेरा कल्याण होगा, यदि ऐसी मान्यता होगी तो वो खतरनाक है। इसलिए उसका निषेध करते हैं। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देवोए अने संतोए शुभाशुभ भावनो निषेध करियो छे। इन्हें अभी तक जितने जो कोई उपदेश हमें मिला है, तीर्थंकरों ने भी यही उपदेश दिया है और तीर्थंकरों के उपदेश के अनुसार जो संतों ने ग्रंथों की रचना की है उसमें भी शुभाशुभ भावों का निषेध किया है। एक गाथा माँ केटलू भर्यू छे। देखो कल तो बात आई थी ना कि शुभ राग अच्छा है ऐसा मानने वाले मनवाने वाले उनका भी संसर्ग टालो, कल ही बात आई थी ना, कल ही पढ़ा था हमने। देखो कौन से पेज पर है? 51 पृष्ठ पर। हाँ हाँ देखो देखो नीचे से वो पांचवी लाइन, शुभ राग करवा जे वो छे एम माननार अने मनावनार नो परिचय के संगति करीश नहीं। बताए ना, क्योंकि पहले से तो मान्यता है शुभ की राग पड़ा है अंदर और ऐसे ही समझाने वाले अगर मिल जाए तो वो और दृढ़ हो जाता है, गृहित मिथ्या तो हो जाता है, तो इसलिए ऐसे जीवों की संगति भी नहीं करना ऐसा कहा। यहाँ तो कह रहे राग की संगति यानी उसका संसर्ग मत करो, परंतु राग भला है ऐसा कहने वालों के भी संगति में मत रहो ऐसा कहते हैं। देखो एक गाथा मां केटलू भर्यू छे भाई, गाथा नो भाव एटले मर्म बहु गंभीर छे। आ तो प्रवचन पूरो थयो, अभी आगे की गाथा, दो गाथा एक साथ है, गाथा 148 149 अथ उभयम् कर्म प्रतिषेध्यम् स्वयं दृष्टांतेन समर्थयते। क्या कहते हैं? उभय यानी दोनों ही,
नेक्स्ट पेज,
पुण्य पाप दोनों ही कर्म जो है वो प्रतिषेध्य यानी निषेध करने योग्य, प्रतिषेध करना यानी निषेध करना, दोनों ही कर्म जो है वो निषेध करने योग्य है। ए वातनु भगवान कुंदकुंदाचार्य पोतेज दृष्टांत थी समर्थन करे छे। ये बीच में लिखने वाले ये कौन है? अमृतचंद्राचार्य। उन्होंने कितने ही गाथाओं को स्वयं दृष्टांत देके समझाया है, इसलिए यहां लिखते हैं कि कुंदकुंदाचार्य ने स्वयं दृष्टांत देके समझाया। क्या लेना, बहुत से जगह क्या हुआ है, गाथा तो लिखी है कुंदकुंदाचार्य ने और दृष्टांत दे देकर समझाया अमृतचंद्राचार्य ने, इसलिए अमृतचंद्राचार्य ने बीच में मथाड़ू लिखा। क्या लिखा उसमें कि कुंदकुंदाचार्य स्वयं दृष्टांत देकर ये बात समझा रहे हैं। अब ये दृष्टांत क्या है इसको हम पढ़ेंगे, गाथा पढ़ेंगे। देखो, जहणाम को विपुरिसो कुच्छिल शीलम जणम विहाणिता वज्जेदितेन समयम संसर्गम राग करणम च एमेव कम्म पयणी शीलसहावम च कुच्छिदम नादुम वज्जन्ति परिहरन्ति य तत्संसर्गम सहावरदा यथा नाम कोऽपि पुरुषः कुत्सितशीलं जनं विज्ञाय वर्जयति तेन समकं संसर्गं रागकरणं च एवमेव कर्म प्रकृति शीलस्वभावं च कुत्सितं ज्ञात्वा वर्जयन्ति परिहरन्ति च तत्सत्सर्गं स्वभावरता जे वीरिते को पुरुष कुत्सिल जील जनने जानिने संसर्गतेनी साथते मजराग करवो परितजे ए मज कर्म प्रकृतिशील स्वभाव कुत्सित जानिने निज भाव मा रत रागने संसर्गते नो परिहरे जे वीरिते को पुरुष कुत्सित शील जनने जानिने साथते मज राग करवो परितजे ए मज कर्म प्रकृतिषि स्वभाव कुत्सित जानिने निज भाव मारत रागने संसर्ग तेनो परिहरे। आपने भी अर्थ समझा ही होगा, जो लौकिक में भी कोई कुशील है कुत्सित है यानी जो सदाचारी नहीं है दुराचारी ऐसे जो व्यक्ति है उसके साथ हम संसर्ग और उसके साथ राग करना टालते हैं, उसी प्रकार ये जो कर्म प्रकृति का स्वभाव कैसा है तो उसको कुशील स्वभावी कहा है। पहले आई थी ना बात, उसको सुशील कैसे कहे जो संसार में भ्रमण करावे। तो ये गाथा का अर्थ हम देखते हैं यहाँ। यथा नाम यानी जैसे, जेम कोपी पुरुष, कोई पुरुष, कुत्सित शीलम कुत्सित शील वाला अर्थात खराब स्वभाव वाला जन्म पुरुष ने विज्ञाय इतले जानी ने तेन समकम तेनी साथे संसर्गम च राग करणम संसर्ग अने राग करवो वर्जयती छोड़ी दे छे। क्या कहा, गुजराती पढ़ेंगे। जेम कोई पुरुष कुत्सिल शील वाला अर्थात खराब स्वभाव वाला पुरुष ने जानी ने तेनी साथे संसर्ग अने राग करवो छोड़ी दे छे। हम कहते ने दुर्जनों के साथ संसर्ग नहीं करेंगे, उनके साथ राग छोड़ देंगे, एवम एवच तेवीज रीते स्वभावरता स्वभावमा रत पुरुषो कर्म प्रकृति शील स्वभावम कर्म प्रकृति ना शील स्वभाव ने कुत्सितम कुत्सित अर्थात खराब ज्ञातवा इतले जानी ने तत संसर्गम तेनी साथे संसर्ग वर्जयंती छोड़ी दे छे परिहरंती च अने राग छोड़ी दे छे। क्या कहते हैं? जैसे पहले दृष्टांत दिया वैसे ही उसी प्रकार तेवीज रीते स्वभाव मा रत पुरुषो कर्म प्रकृति ना शील स्वभाव ने कुत्सित अर्थात खराब जानी ने तेनी साथे संसर्ग छोड़ी दे छे अने राग छोड़ी दे छे। ये कौन से कर्म की बात चल रही है?
देखो यहाँ पर बात ऐसी है कि जैसे हमारे घर में पहले तो क्या करते हैं, जॉइंट फैमिली यानी सब भाई ये लोग साथ में रहते थे, तो कोई ऐसा होता है कि घर में माता बहनें होती हैं उस समय कोई किसी एकाध भाई का लड़का या उसका कोई मित्र ऐसे बाहर से आवे और अपने घर के ही लोगों के साथ वो खोटा बर्ताव रखना चालू करे तो हम उसको घर में आने देंगे कि नहीं? हाँ, निकाल देंगे। तो जब हम देखते हैं कि ऐसे लौकिक में भी ऐसा अगर हमें कोई कुत्सित जन ख्याल में आ जाए तो उसको हम घर में आने नहीं देते या उसके साथ मैत्री भी नहीं रखते, उसको छोड़ देते हैं, संबंध भी नहीं रखते हैं। वैसे यहाँ कहते हैं
कर्म प्रकृति की बात है। उदय में आने वाली कर्म प्रकृति उसको बताएंगे।
तो कर्म प्रकृति ना शील स्वभाव ने कुत्सित अर्थात खराब जानी ने तेनी साथे संसर्ग छोड़ी दे छे। अभी उसका जो अर्थ है, जेम कोई पुरुष जेम कोई कुशल वनहस्ती पोताना बंधने माटे समीप आवती सुंदर मुखवाड़ी मनोरम के अमनोरम हाथनी रूपी कुटनी ने परमार्थे बुरु जानी ने तेनी साथे राग तथा संसर्ग करतो नथी तेवी रेते आत्मा अरागी अने ज्ञानी थयो थको पोताना बंधने माटे समीप आवती उदय में आवती मनोरम के अमनोरम शुभ के अशुभ बधी कर्म प्रकृति ने परमार्थे बुरी जानी ने तेनी साथे राग तथा संसर्ग करतो नथी।
उदय में आने वाली कोई अच्छी है कर्म प्रकृति, कोई बुरी। जैसे हमारे जो संयोग है ना, ये हमने अच्छे कर्म किए उसका अच्छा संयोग है, उसमें खुशी खुशी हो रहे ना, उसमें राग करता है कर्म के उदय में राग करता है तो उसने वो शुभ को अच्छा माना, शुभ कर्म को अच्छा माना है। नए बंध में वो कारण होगा ना, उसमें अगर वो रचा पचा रहा कर्म प्रकृति के फल में जो अभी उदय के काल में जो कुछ बनाए रहे हैं उसमें अगर उसने एकत्व बुद्धि की, उसमें अगर वो जुड़ा गया तो नया बंध होगा। उसके लिए यहाँ हाथी की उपमा दी है, उसके लिए वन हस्ती लिखा था ना, वन का हाथी है ना, वो अभी बंधा हुआ नहीं, वो स्वतंत्र है, स्वाधीन है। परंतु यदि वो राग करेगा वो कुटनी हाथीनी के साथ तो वो बंध में पड़ने वाला है। वो भले वो हाथीनी जो है वो मनोरम हो या अमनोरम हो, वो तो बंध में निमित्त बनने वाली है। यदि उसके पीछे गया तो वो क्या करता है, तो उसके साथ राग तथा संसर्ग करतो न थी। अब वैसे ही यहाँ ज्ञानी की बात की है, ज्ञानी क्या कहते, पोताना बंधने माटे समीप आवती, क्या है, उदय रूप कर्म प्रकृति। देखो आठों ही कर्मों का उदय हर समय चल रहा है, हमने ये बात बहुत विस्तार से देखी थी ना, तो उसमें नया बंध क्यों होगा? भले वो कर्म प्रकृति शुभ कर्म का उदय हो या अशुभ कर्म का उदय हो, तो शुभ के उदय में बंध होगा कि अशुभ के उदय में होगा? हाँ, जुड़ेगा तो। उदय तो आठों कर्मों का है, परंतु बंध कब होगा, मोहनी के हृदय में उसमें वो राग द्वेष करता है, उसके साथ राग करता है, कर्म के उदय में वो राग द्वेष रूप परिणमता है, मोह राग द्वेष करता है, तो नया बंध होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि उदय में आने वाले शुभ के अशुभ बधे सभी कर्म प्रकृति परमार्थ है बुरी जानी ने, तो उसके साथ वो राग नहीं करेगा, संसर्ग नहीं करेगा। कर्म प्रकृति तो उदय में आएगी, उसका फल मिलेगा, उसका निमित्त बनेगा, जो कुछ यथाग्य, परंतु उसमें ये जुड़ेगा नहीं, उसमें रुचि नहीं करेगा, राग नहीं करेगा, तो नया बंध भी। एक भावार्थ कल देखेंगे, समय हो गया,
बाकी बात कल करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूजे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो
Yeah.